नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने 35 इलेक्ट्रिक ऑटो टिप्पर को झंडी दिखाकर स्वच्छता बीड़े में शामिल किया और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, इनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
समारोह में 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी मेधावी छात्रों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। अत्यधिक सुविधा से संस्थान की AI, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतः विषयक अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के विभिन्न बाजार और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित जन सुनवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई, बेहतर शहरी नियोजन और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। श्री द्विवेदी ने पदभार संभालने के बाद परिषद के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने नागरिक सुविधाओं, प्रभावी सेवा वितरण और नागरिक केंद्रित प्रशासन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। श्री द्विवेदी ने केशव चंद्रा का स्थान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए। सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान निरसन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। दिल्ली विधानसभा के आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र से पहले दिन विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत और आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार दिल्ली की लाखों महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है।
ये दिल्ली की बहनों का विश्वास है और इस विश्वास पे खरा उतरना हमारा धर्म है। हमने 2500 रुपए की योजना लागू की है और बहनों को उनका सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले, ये हमारा काम।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बहनें खुश हैं और उनकी सरकार ने महिलाओं से किया अपना वादा पूरा किया है।
2015 तक की डेट थी जिसमें कि किसी झुग्गी को सरकार मकान दे सके, जिसे हमने 1 जनवरी 2025 किया है और इसके अंतर्गत आने के बाद में दिल्ली की 99% झुग्गियों को मकान मिल जाएगा। कोई भी झुग्गी मुझे लगता है छूटेगी नहीं। एक विस्तृत योजना जिसका लाभ सब तक पहुंचे, ये काम करना कोई आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के सानिध्य में ये योजना पूरी हो पा रही है।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बहनों से किया गया वादा पूरा किया गया है।
इतिहास रचा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कहा वो किया। ये वादा किया था दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की बहनों से, दिल्ली की माताओं से, और उस दिल्ली लक्ष्मी योजना का वो वादा पूरा किया गया है। लाखों बहनें इसके फॉर्म भर रही हैं और जो उत्साह है बहनों में वो यहाँ दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद के लिए भी बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन है।
सत्र के दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रुपए की सहायता उपलब्ध होगी। वहीं इस योजना पर खुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ी योजना है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
एक बहुत बड़ी योजना जो हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत 2500 रुपया महीना दिया जा रहा है, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी योजना है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, दिल्ली के लोगों से वादा किया था, आज हम उसकी बधाई जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं। ये एक वो सोच है जो हमारी बहन बेटियों को मजबूत करती है, उनके भविष्य में उनके बच्चों को मजबूती देती है, और ये एक वो सोच है जो औरत को आत्मनिर्भर बनाने का बहनों को काम करती है।
इस योजना के लिए अब तक 4,57,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। वहीं लगभग 1,73,000 महिलाओं ने अपने आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा ने भाषणी को सदन की कार्यवाही के दौरान अपने AI आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पहल का उद्देश्य विधायी कामकाज को उचित समय में ट्रांसक्राइब और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की तकनीक की क्षमता का आकलन करना है। ये पहल दिल्ली विधानसभा की उन नई तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाती है जो विधायी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाने में सहायक हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार किए गए हैं। वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में एक सम्मेलन के दौरान इन सर्किट को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सर्किट के माध्यम से पर्यटक दिल्ली की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को कम समय में बेहतर तरीके से देख सकेंगे तथा अधिक दिनों तक ठहरने के लिए प्रेरित होंगे। भारत की व्यापारिक और उद्यमशील क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के संयुक्त देखरेख में होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
यह आयोजन भारतीय उत्पादों, सेवाओं, MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और कारीगरों को देश और दुनिया के बाजारों से जोड़ने का मंच बनेगा, जहां वे अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में 1000 से अधिक प्रदर्शकों, 40 से अधिक देशों के 2,00,000 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और लगभग 1,000,000 आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि कि नए भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का उत्सव है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि यह महोत्सव भारतीय कारोबार को नए बाजार, निवेश और वैश्विक साझेदारियां उपलब्ध कराने के साथ मेड इन इंडिया को मेड फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन भी जब्त किया है। और अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। साथ ही दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु हरिकिशन बादशाह के प्रकाश पर्व पर बधाई दी। श्री गुप्ता ने सदन की शुरुआत में कहा कि दिल्ली विधानसभा के डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग को सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी AI संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विधायी प्रबंधन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता का आकलन करना है। इसके बाद शून्यकाल में विधायकों ने जनहित के मामले विशेष उल्लेख के साथ उठाए। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदन में अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सदन को गंभीरता से नहीं लेती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022, 2023 और 2024 में प्रश्नकाल नहीं हुआ था। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष से लोक लेखा समिति उन CAG रिपोर्ट की जांच में लगातार कार्य कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दवा घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। इसके कारण आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। भोजन अवकाश के बाद विधानसभा कार्यवाही की सुचारू रूप से शुरू हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन पर पटल पर प्रस्तुत की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के संदर्भ में जारी अधिसूचना और दिल्ली विद्यालय शिक्षा कठिनाइयों का निवारण आदेश 2026 के संदर्भ में जारी अधिसूचना सदन में रखी। इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन की अनुमति से दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट निरसन विधेयक 2026 को सदन में प्रस्तुत किया। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। राजधानी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में आज सवेरे से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने 35 इलेक्ट्रिक ऑटो टिप्पर को झंडी दिखाकर स्वच्छता बेड़े में शामिल किया। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।